यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनोचारी यमुना तीरावनोचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Radha Sama Sundara, Radha Sama Sundara Adi. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhi. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
हरिनाम संकीर्तन की जय। विष्णुवाद परमंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सुत श्री श्रीमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बिबड़ी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय ब्रह्म मध्य गुरु संपदाय आचार्य बिंद की। श्री रूप से सनातन सजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडवर्षी प्रभुगण की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। श्री रूप से जय प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त बिंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजो हुई श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, नीलाचल क्षेत्र श्रीपुरी धाम की, श्री श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, धम्म श्री गौर भक्त बिंद की, हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे हरे। ऑल ग्लोरी सुदया से मिल बड़ी हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी सुदया से मिल बड़ी हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी सुदया से मिल बड़ी हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी चल ग्लोरी चल ग्लोरी श्री गुरु गौरंग। ऑल ग्लोरी श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुर्मीलितं येन तद्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरौ श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्तदीसुतारिणी वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितानं पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणारसिंध दीनबंध जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो यः मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मुखं कृतिवाचलं पङ्गुलं तैग्रीं यत्कृपा हेतमं वन्दे श्रीगुरुधिनुतारिणम् अंशुभागवता संदासोऽस्मि सर्वदा तत्कृपापेष्टकनित्यं तत्पृष्टश्चत्करमीशम राधा समंग संशक्ति सखी संग निवासिनी तमहं सततं वंदे माधव्याश्रम विग्रहं हरे कृष्णा आज सभी यहाँ पे उपस्थित सज्जन भक्त मंडली और सज्जन वैष्णवी माता भक्तबिंद सभी के चरण में मेरा श्रद्धापूर्वक प्रणति ज्ञापन करते हुए सभी को आप लोग सब ब्रजवासी धामवासी है सभी से मैं कृपा याचना प्रार्थना करता हूँ आप लोग सब मुझे कृपा आशीर्वाद प्रदान कीजिए जैसे मैं आज का भागवत संदर्भ में भगवान के बारे में कुछ बोल पाऊं বঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাপনেভ্যো বসনেভ্যো নমো নমঃ। জয় ব্রজবাসী ধামবাসী গৌরভক্তবৃন্দ কি জয়। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতম এ যে সন্দর্ভে চল রহে সপ্তম স্কন্ধ অষ্টম স্কন্ধ সাত অধ্যায় আজ নৌ আর দশ নম্বর শ্লোক হামলোক আট হয়ে গেল না নৌ আর দশ আর দশ শ্লোক নয় নম্বর শ্লোক মে পারপোর্ট নেই হে ইসলে দশ নম্বর শ্লোক মে ছোটা প্রভুপাদ জি নে পারপোর্ট দিয়া হে। আজকে শ্লোক বহুত হি মহত্বপূর্ণ শ্লোক হে ইসলে প্রভুপাদ জি এই শ্লোক মে যা ছোটা সে যা পারপোর্ট দিয়া হে ও ভি বহুত হি মহত্বপূর্ণ হে। চাই হামলোক আজকে শ্লোক সে বহুত কুছ শিক্ষা গ্রহণ কর সকতে হ্যাঁ যদি চাহে তো আর নেই চাহে তো তো আলাগ বাত হ্যাঁ। বহুত সুন্দর সন্দর্ভ দিয়া আজ মে নয় নম্বর শ্লোক পহলা পড়কে যা রা হুম। তমু স্থিতং বিক্ষ কুলা চলং পুনঃ সমুদ্ধতা নির্মিথিতং সুরা সুরাহ দধার পৃষ্ঠেন সলক্ষ যোজন প্রস্তারিণ দীপ ইবা পরু মহান। অনুবাদ জব দেবতা তথা অসুরনের জব দেবতা তথা অসুরনে দেখা কি মন্দর পর্বত উঠা গিয়া হ্যায় তো ওই প্রফুল্লিত হয়ে গেই আর পুনঃ মন্থন করতে কে প্রোৎসাহিত হই ওহ পর্বত বিশাল কছুয়ে কে পিঠ পর টিকা থা যো এক বিশাল দ্বীপ কে ভাতি আট লাখ মিল তক ফেলা হুয়া থা। কাল যে ভাগবত সত্র মে মহারাজ সেই জন্য ভক্তি প্রবোধানন্দ স্বামী মহারাজ বাতায় থে তো কছুয়া কতনা বড়া থে হ্যাঁ মহারাজ পুছে থে না কছুয়া কতনা বড়া যে মন্দর পর্বত কো পিটকা পিটে টিকা হুয়া থা তো কছুয়া কতনা বড়া থি আট লাখ মাইল হ্যাঁ আট লাখ মিল তক বড়া কতনা বড়া এক দ্বীপ থা দ্বীপ কা তর থা। আবি দশ নম্বর শ্লোক হামলোক মে শ্লোক তরা মে পহলা সন্ধি বিচ্ছেদ করে কে বতায়েঙ্গে উসকে বাদ এক সাথ মে শ্লোক পাঠ করেঙ্গে। সুর অসুর ইন্দ্রই ভুজ বীর্য বিপিতং সুরা সুরেন্দ্রই ভুজ বীর্য বিপিতং পরিভ্রমন্তং গিরিম অঙ্গ পৃষ্ঠতঃ পরিভ্রমন্তং গিরিঅঙ্গ পৃষ্ঠতঃ বিভ্রত তৎ আবর্তনম আদিকচ্ছপ বিভ্রত আবর্তনম আদিকচ্ছপ মেনে অঙ্গ কুণ্ডুয়নম অপ্রমেয় মেনে অঙ্গ কুণ্ডুয়নম অপ্রমেয় सुरा सुरेन्द्रियै भूयवीर्य वेपितम् परिभ्रमन्तं गिरिमङ्गपृष्ठतः बिभ्रत्तत् आवर्तनम् आदिकच्छप मेने अङ्गकण्डोयनम् अप्रमेय सुरा सुरेन्द्रै भूयवीर्य वेपितम् परिभ्रमन्तं गिरिमङ्गपृष्ठतः बिभ्रत्तत् आवर्तनम् आदिकच्छप मेने अङ्गकण्डोयनम् अप्रमेय शब्दार्थ सुर असुर इंद्रियै देवताओं तथा असुरों के नायकों द्वारा भुज वीर्य अपनी भुजाओं के बल पर वेपितम गति करते हुए परिभ्रमन्तम घूमता हुआ गिरिम पर्वत को अंग हे महाराज परीक्षित पृष्ठतः अपनी पीठ पर विभ्रत स्थित तत् उस आवर्तनम घूमते हुए आदि कच्छप आदि कछुए की तरह मैंने विचार किया अंगकंडुयनम शरीर को खुजलाने का समान सुहारवाना अप्रमेय असीमित शिल प्रभुपाद गया अनुवाद तात्पर्य जगत में शिल प्रभुपाद की हे राजन जब देवताओं तथा असुरों ने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए के पीठ पर स्थित मंदर पर्वत को घुमा दिया, तो कछुए ने पर्वत के इस घूमने को अपना शरीर खुजलाने के साधन के रूप में अनुभव किया। इससे उन्हें अत्यंत सुखप्रद अनुभूति हुई। कृपा करके आप लोग सही बात बताइए, हे राजन, जब देवताओं तथा असुरों ने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए के पीठ पर स्थित मंदर पर्वत को घुमा दिया, तो कछुए ने पर्वत के इस घूमने को अपना शरीर खुजलाने के साधन के रूप में अनुभव किया। इससे उन्हें अत्यंत सुखप्रद अनुभूति हुई। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव असीम है। यद्यपि कच्छप रूप में श्री भगवान ने अपने पीठ पर मंदर पर्वत नामक विशालतम पर्वत धारण कर रखा था, किंतु उन्हें कोई असुविधा अनुभव नहीं हो रही थी। विपरीत इसके उन्हें थोड़ी खुजलाहट लग रही थी, जिससे पर्वत का घूमना उन्हें निश्चय ही अत्यंत रुचिकर लग रहा था। यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त कर दिया। अब सब समझ गया है, कितना सुंदर प्रभुपाद जी बात आगे गया। अब लोग सभी समझदार व्यक्ति हैं, कितना सुंदर अनुवाद में बता रहे हैं। हे राजन, जब देवताओं तथा असुरों ने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए के पीठ पर स्थित मंदर पर्वत को घुमा दिया, तो कछुए ने पर्वत के इस घूमने को अपना शरीर खुजलाने के साधन के रूप में अनुभव किया। इससे उन्हें अत्यंत सुखप्रद अनुभूति हुई। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान दिन को रात कर सकते हैं, रात को भी दिन कर सकते हैं, है ना? ये भगवान का तो सब कुछ संभव है। इसलिए भगवान आज का जो ये श्लोक है, ये श्लोक का ये जो अनुवाद में बताया गया, भगवान ने क्या बना लिया, मंदर पर्वत भगवान का कोचर रूप ले लिया। केशव धीत कूर्म शरीर जय जगदीश हरि। भगवान जैसे कूर्म रूप लेके मंदर पर्वत को पीठ का ऊपर रखा, तो भगवान कूर्म रूप लेके मंदर पर्वत को एक साधन बना लिया। क्या साधन बनाया? शरीर खुजलाने का एक साधन बना लिया। शरीर में खुजली आते है ना कभी कभी, तो भगवान का शरीर में ऐसे एक साधन बना लिया। भगवान कितना सुंदर एक शिक्षा दे रहे हैं, इससे हम एक बहुत सुंदर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमारा इस आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति जीवन में कितना तनाव आ सकते हैं, कितना तनाव आते हैं, कितनी कठिनाई आते हैं, उसको किस तरह तरीका से हमें ग्रहण करना चाहिए। ये भगवान का आज का जो संदर्भ है, हमें ये शिक्षा बहुत सुंदर रूप से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे भगवान कछुए रूप लिया, मंदर पर घूमने लगा, भगवान ने उसको पॉजिटिव रूप में लिया, उसको शरीर में खुजलाने का साधन रूप में मान लिया। उन लोग हमारा भक्ति जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में ऐसे बहुत तकलीफ भी आएंगे, तनाव भी आएंगे, कठिनाई भी आएंगे, तो उसी समय हमें उसको भी भक्ति जीवन में हमेशा के लिए उससे एक साधन बना लेना चाहिए। भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक साधन यदि बना लेंगे हमारे कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं रहेगा। यदि कठिन से कठिन वस्तु को हम लोग उसको एक साधन बना लेंगे, भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का साधन बना लेंगे, और कठिन रहेगा आसान हो जाएगा। कैसे संभव हो सकते हैं? हमारा पूर्वतन आचार्य वर्ग इतने सारे शास्त्र ग्रंथ हैं, चतुर्वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, रामायण महाभारत है, ग्रंथराशि भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, इतने सारे ग्रंथ कौन पढ़ा है अभी तक? कोई पढ़ा नहीं। चार वेद पढ़ा नहीं, एक साथ उपनिषद ही पढ़ नहीं पाया। रामायण महाभारत ग्रंथराशि भागवतम 18,000 श्लोक भागवतम। कलयुग का आदमी का लक्षण क्या है? कलयुग के आदमी का लक्षण भागवत में बताया गया ना, महामुनि व्यासदेव गोस्वामी, पहला स्कंद पहले अध्याय 10 नंबर श्लोक बताया गया। क्या श्लोक है? प्रायण अल्पाय सभ्य कलवस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य ही उपद्रता। कलयुग में इंसान का सब कुछ मंद है, अच्छा है आपका सब कुछ अच्छा है? तो शास्त्र के अनुसार सब कुछ मंद है, सब कुछ मंदा है। इसलिए हमारा वैष्णव आचार्य बिंद कितना कृपा करके सारे शास्त्र का मंथन करके, जैसे समुद्र मंथन हो रहा है सूर असुर के बीच में, हमारा वैष्णव आचार्य बिंद ने सारे शास्त्र का मंथन किया। किस लिए? हम लोगों का तरफ पोती जीवन के लिए शास्त्र, सारे शास्त्र का मंथन करके उन लोग रसमलाई का तरह उपस्थापित करके गया हम लोगों के पास। रसमलाई खा के बहुत मजा लगता है ना, अच्छा है, होना चाहिए। इसलिए वैष्णव आचार्य सच्चिदानंद भक्तिमती ठाकुर ने बताया, बहुत सुंदर चीज बता के गया हम लोगों के लिए। कैसे हमारे संभव होगा, कैसे हमारा इस आध्यात्मिक जीवन में कठिन से कठिन चीज को कैसे हम लोग भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए साधन बना सकते हैं? भक्तिमती ठाकुर ने हम लोगों को बता के गया बहुत सुंदर रूप से। भक्तिमती ठाकुर महाशय हमारे तरह कोई साधारण आदमी थे? ब्रिटिश अमल में भक्तिमती ठाकुर महाशय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जिला शासक रूम में पोस्टिंग थे। ऐसा एक महान वैष्णव, उन्होंने हम लोगों के लिए कितना सुंदर रूप से हम लोग इस भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए बहुत सुंदर चीज बता के गया। सुनेंगे कैसे संभव होगा? भक्तिवेद ठाकुर महाशय बता रहे हैं, आत्मनिवेदन त्वा पदे करी होइनु परम सुखी प्रभु, होइनु परम सुखी। एक ही मात्र साधन है, यदि हम लोग भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करेंगे कुछ लॉस होगा? जब हम लोग भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करेंगे होइनु परम सुखी, हम लोग परम सुखी बन जाएंगे। इसलिए भक्त में ठाकुर इस तरह बहुत सुंदर सुंदर चीज बता के गया। तब क्या होगा यदि भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करेंगे? भक्त में ठाकुर बताते हैं, दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदी के आनंद देखी, प्रभु चौदी के आनंद देखी, प्रभु चौदी के आनंद देखी। यदि भगवान के चरण में हम लोग आत्मसमर्पण करेंगे सारे दुख नाश हो जाएगा, सारे दुख से हम लोग बांच जाएंगे। इस भौतिक संसार में कोई दुख प्राप्त करना चाहते हैं? कोई नहीं है, कोई भी दुख नहीं चाहते हैं। सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, परंतु सुख चाहते हैं सुख आते नहीं है, दुख नहीं चाहते हैं दुखी आते हैं, जो चाहते हैं वो आते नहीं है, जो आते हैं उसको चाहते नहीं है। यही है कलियुग का स्वभाव। इसलिए वैष्णव कवि चन्नीदास, आप लोग नाम सुने होंगे ना, कवि चन्नीदास। कवि चन्नीदास हमारा इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन को जो इतिवृत्त तो क्या है इसको लेके बहुत सुंदर एक पद लिखा है। हर व्यक्ति सुख चाहते हैं परंतु सुख आते नहीं है, परंतु हम लोग जानते नहीं है सुख का स्रोत कहाँ पे, सुख कहाँ से आते हैं ये हम लोग जानते नहीं है, ये पता ही नहीं है। एक बहुत सुंदर पद लिखा है कवि चन्नीदास ने, ये गाना यदि अगला बार कभी भी आएंगे हमें इसका एक पिक्चर बनाया है वो गाना के ऊपर, बहुत सुंदर रूप से हम लोग गाना सुनेंगे, पिक्चर देखेंगे और उपलब्धि करेंगे, रियलाइजेशन करेंगे। कवि चन्नीदास मैं एक लाइन बता रहा हूं, ये जो इतना सुंदर घर परिवार किस लिए बनाते हैं, इतना सुंदर मकान किस लिए बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? हाँ, सुख प्राप्ति के लिए ना। इसलिए चन्नीदास यही बता रहे हैं, सुखी रो लागिया ए घर बांधिलु अनले पूड़िया गेलो। हम लोग सुख प्राप्ति के लिए कितना सुंदर मकान बनाते हैं, कितना सुंदर हमारे फैमिली बनाते हैं, कितना सुंदर परिवार सुखी परिवार बनाना चाहते हैं, परंतु सुखी परिवार नहीं आते हैं, दुख से दुखी बन जाते हैं। है कि ना? इसलिए कवि चन्नीदास बताते हैं, अमिया सागरे स्नान करीते कि बोली गौर भेलो। हम लोग अमृत का कुंड में नहाने के लिए गया, जाके देखा उस सागर में पूरा जौहर में भरा हुआ है, जौहर में भरा हुआ है, यदि उसमें स्नान करेंगे कितना मजा आ जाएगा। कवि चन्नीदास देखिए हमारा मनुष्य जीवन का इतिवृत्त तो कितना सुंदर बता के गया, हमें सुख प्राप्त करना चाहते पर सुख आते नहीं है। इसलिए वैष्णव आचार्य बिंदु कितना सुंदर सुंदर चीज बता के गया हम लोगों के लिए, तब कैसे हम लोग इस भौतिक संसार में रहते हुए भी कैसे हम लोग कठिनाई से कठिन चीज को यदि हमें वर्ण कर लेंगे, कैसे हमारा भक्ति जीवन हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत सुंदर इसमें भगवान के चरण में भक्ति ठाकुर बताते हैं, यदि भगवान के चरण में हम लोग आत्मसमर्पण करेंगे तब सारे दुख हमारा दूर हो जाएगा। दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदी की आनंद देखी, सारी दिशा में आनंद ही आनंद देख पाएंगे। और भगवान का चरण किस तरह है, भगवान का पाद पद्म किस तरह है, भगवान का पाद पद्म होता है अशोक अभय। भगवान का श्री चरण पाद पद्म अशोक, यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण में शरण लेते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं, भगवान का पाद पद्म होता है अशोक, कोई शोक नहीं है वहां पे, अभय। भगवान होते अभय दाता, भगवान अभय प्रदान करते हैं, जिसपे हम लोगों को दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं, भगवान के पास आके हम लोग हाथ जोड़ते हैं, हे प्रभु मेरा कपाल में कि यही लिखा था, इतना दुख से दुखी मिला था मुझे, मुझे थोड़ा कृपा कीजिए। भगवान के पास हम लोग आके प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान का श्री पाद पद्म होता है अशोक अभय। और क्या है भगवान के चरण में, अमृत आधार, भगवान के चरण में अमृत रहते हैं, इसलिए चरणामृत जो पान करते हैं ना, चरणामृत पान करते हैं, चरणामृत लिया सब भक्त लोग, माता लोग लिया नहीं, चरणामृत पान करने का समय क्या मंत्र एक है, मंत्र बोल के यदि हम लोग पान करते हैं उस चरणामृत का पूरी से पूरी हम लोग फायदा ले सकते हैं। चरण प्राप्त करने का मंत्र होता है अकाले मृत्यु हरणं सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादुदकं पित्ता शिरसा धरणी अहम। तो कोई सवाल पूछ सकते हैं, मैं तो इतना साल से चरणामृत ले रहा हूं तो मेरा शरीर में इतना सारे बीमारी क्यों, चरण प्राप्त करने का मंत्र अकाल मृत्यु हरण, चरण मृत्यु यदि हम लोग ग्रहण करेंगे अकाल मृत्यु से हम लोग बच जाएंगे, और क्या होगी सर्व व्याधि विनाशनम, सारे व्याधि से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तब सवाल पूछ सकते हैं, मेरा मैं तो आज 20 साल से चरण मृत्यु ले रहा हूं, मेरा शरीर में इधर से बीमारी क्यों है ना, सरल आंसर है, मतलब है दाल में कुछ काला है, हमें चरणामृत ग्रहण कर रहे पर पूरा विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है हमारा भगवान का प्रति, इतना दृढ़ विश्वास नहीं है। इसलिए भक्तिवेद ठाकुर महाशय और एक सुनाते गाने में बताते हैं, भजने उत्साह भक्ति में विश्वास प्रेम लाभे धैर्य धनो, ये तीनों चीज कोई यदि पूरी तरह से पालन कर पाएंगे एक दिन न एक दिन उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भजन में उत्साह होना चाहिए, उत्साह पूर्वक भजन करना चाहिए, ये तो भौतिक संसार में तो उत्थान पतन रहेगा, उत्थान पतन रहेगा, भजन ही उत्साह, और भक्ति में विश्वास, क्या विश्वास होना चाहिए, अवश्य रखे कृष्ण विश्वास पालन, मुझे जरूर भगवान राधे श्याम सुंदर जी मुझे रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। मन में यदि दृढ़ विश्वास रहेगा राधा श्याम सुंदर जी हमें हमेशा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयारी रहेंगे। और एक चीज है, प्रेमो लाभी धैर्य धनो। हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए धैर्य रखना पड़ेगा। ये तीनों चीज यदि हम लोग पालन कर पाएंगे हमारा आध्यात्मिक जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, कष्ट। इसलिए भक्त में ठाकुर बताते हैं, इस गाने में बता रहे हैं, सेवा करने के समय तो दुख आएगा, दुख आते हैं ना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं प्रभु जी हमें हमेशा के लिए सेवा पाते हैं, सेवा बोलते हैं, और तो बहुत सारे भक्त लेके मुझे क्यों पाते थे अकेला, मैं कि अकेला हूं क्या, रसमाय लेके तो मुझे बुलाते नहीं है, तो सेवा के लिए मुझे बुलाते हैं। कभी कभी मन में हमारा विचार आ सकते हैं, भक्ति में ठाकुर बताते हैं, तुम्हारो सेवाय दुख हय जत से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख, प्रभु नाशय अविद्या दुख। सेवा सुख दुख परम संपद, सेवा के समय जितने दुख आएंगे, जितने कठिनाई आएंगे, हमें समझना चाहिए हमारा भक्ति जीवन प्रशस्त हो रहा है, भक्ति जीवन में हमें आगे बढ़ने का रास्ता सफाई हो रहा है। जैसे भगवान ने कूर्म रूप लिया, मंदर प्रवेश घूमने लगा, भगवान कूर्म ने उसको पीठ खुजा लेने के एक साधन माना लिया। इसी तरह हमें भी जिस समय भगवान की सेवा करने के समय बहुत दुख आएंगे, बहुत कष्ट आएंगे, उसी हिसाब से हमें शिकार कर लेंगे, तब क्या होगा, इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति फायदा चाहते हैं, मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा, बहुत फायदा, ये जो फायदा मिलेगा वो कोई कल्पनातीत है, हमारा कल्पना का बाहर है। सेवा सुख दुख परम संपद, सेवा करने के समय जितना सारे दुख आएंगे कठिनाई आते हैं, ये हमारा परम संपदा बन जाते हैं। ये परम संपदा से हमारे सारे जो अविद्या है, अविद्या सब नाश कर देंगे, नाश कर देते अविद्या को। इसलिए शास्त्र में बहुत कुछ इसका प्रमाण है, बहुत कुछ दृष्टांत देखे गया। 9 बजने वाला है और 5 मिनट में बोलेंगे। यदि पंच पांडव का मामी कुंती देवी, उनका उन लोग किसका ऊपर भरोसा करके रहा था, भगवान के ऊपर, भगवान ही हमारा प्रभु है। तो भगवान जिसका सहाय में है, भगवान जिसका अधीन है, तो पंच पांडव को, द्रौपदी माता को, कुंती माता को कितना दुख कष्ट झेलना पड़ा। कभी भी एक बार तो बोला नहीं युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती माता द्रौपदी माता कभी भी एक बार बोला ये हमें भगवान के चरण में सरेंडर, फिर भी हम लोग को क्यों इतना दुख मिल रहा है, कभी भी एक बार मन में सोचा भी नहीं है। जो हमारे लिए आते हैं भगवान हमारा मंगल चाहते हैं, इसलिए भक्तिमय ठाकुर बता रहे हैं तुम्हारो सेवाए दुख हो जो तो से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम सम्पद नाश है अविद्या दुख, ये अविद्या दुख को सब नाश कर देंगे। यदि हम लोग सेवा के समय दुख को पॉजिटिव रूप में ग्रहण करेंगे, कितना सुंदर 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 सब रसमलाई की तरह हम लोगों को देखे गया, रसमलाई मुंह में डाल दो हरे कृष्ण, कोई कठिनाई नहीं है। रसमलाई खाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, बोलते गला में अटक गया, अटक जाते हैं, खाके देखा उज्जैन में आइए रसमलाई खिलाऊंगा आप लोगों को सभी को। उज्जैन में भगवान को रसमलाई बांधते हैं, सब उज्जैन में आइए सभी को रसमलाई खिलाएंगे मैं। रसमलाई क्या चीज है, उज्जैन आएंगे कौन कौन आना चाहते हैं, माता लोग आना चाहते नहीं है शायद, लग रहा है माता लोग रसमलाई घर में बना के खाते हैं ना। घर में बना के खाओ और उज्जैन में आके रसमलाई खिलाएंगे, आसमान जमीन अंतर मिलेगा। जरूर आप लोग सब उज्जैन आइए कृपा करके। ये उज्जैन जैसे वृंदावन धाम है, उज्जैन भी एक धाम है। उज्जैन बहुत ही एक महत्वपूर्ण धाम है। कृष्ण बलराम साक्षात यहां से वहां पे गुरु गुरु श्रीपाठ है, गुरु जी का श्रीपाठ है उज्जैन धाम में। शांतिपुनि मुनि का गुरुकुल में 64 दिन रहा कृष्ण बलराम दोनों, रहा के 64 दिन में 64 कला विद्या शिक्षा ग्रहण किया कृष्ण बलराम दोनों। कौन कौन 64 कला विद्या शिक्षा ग्रहण किया कृष्ण बलराम जी ने मैं नहीं बताएंगे, आप लोग वहां पे प्रदर्शनी करके रखा है, आप लोग सब देख के लिख के लेके आना। 64 कला विद्या अभी तक से संध्या पुनिमुनि का आश्रम है, संध्या पुनिमुनि का जिसमें उम्र ज्यादा हो गया था वहां पे संध्या पुनिमुनि तीर्थ दर्शन करने के लिए जाने के लिए मन में सोचा है, तो उम्र ज्यादा हो गया एक बार तीर्थ दर्शन करके आएंगे। जब भगवान के कान में ये संदेश गया, भगवान ने संध्या पुनिमुनि को बोला नहीं गुरु जी इसी उम्र में आपको बाहर जाना आवश्यकता नहीं है। संध्या पुनिमुनि के आश्रम का पीछे एक कुंड है, आप इस कुंड में स्नान करिए, इस कुंड में सारे तीर्थराज सारे तीर्थ यहाँ पे विराजमान है। तो संध्या पुनिमुनि को सामने लेके गया, खड़ा करके रखा, भगवान श्री कृष्ण पास पे खड़ा होके एक एक तीर्थराज को बुला रहा है, एक एक तीर्थराज जो पानी के ऊपर से उठ के भगवान प्रणाम करके फिर पानी के अंदर जा रहे हैं, सारे तीर्थराज वहां पे विराजमान है। तब संध्या पुनिमुनि का विश्वास आया मन में, नहीं यहाँ पे सारे तीर्थराज तार सारे दिन तो विराज है ये अभी। तब संध्या पूर्णिमा ने उस कुंड में नहा के सारे तीर्थों का फल प्राप्त हुआ किया। अभी भी वो कुंड है, अभी जब जाएंगे देख मिलेंगे आप लोग देखेंगे। उज्जैन का बहुत महत्व है, जब यदि आएंगे तब वहां का धाम महत्व में बताएंगे ये उज्जैन धाम कितना महत्वपूर्ण धाम है। यहाँ पे मैं विराम देता हूँ, किसी को कोई सवाल है तो एक सवाल हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे विराम लेते हैं। जय गंधराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समेत गौर भक्त वृंद की, धामवासी ब्रजवासी गौर भक्त वृंद की, पिताय गौर प्रमानंदे, श्रील प्रभुपाद।